दौला पुस्तक सातवी लेक्चर नंबर 5। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोए सौवसा। जय उधर सेनाहो जेन महाकम्म पयणि पाहुड़ सेलो, बुद्धि सिरेणुद्धरियो समप्यो फुफयंतस। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी गई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें अभी हमारा द्वितीय खंड शुरू हो गया है। पहले खंड का नाम याद है कि नहीं? जीवस्थान। अब इसका नाम है खुद्दा बंद। अभी उसमें हम सातवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 42 पर आ गए, 42। देखो अभी बात क्या हो रही थी, प्रश्न पूछा था कि नारकी नरगति में नारकी क्यों होता है या किस प्रयोजन से होता है वगैरह। तो उसके उत्तर में बताया था कि नरगति नाम कर्म के उदय में। फिर दोबारा प्रश्न हुआ, क्या अकेली एक नरगति नाम कर्म का ही उदय होता है, क्या अन्य भी किसी प्रकृतियों का उदय होता है? तो उसके लिए प्रत्येक गति में कौन कौन से नाम कर्मों का उदय पाया जाता है उसकी बात वहां बताई। जैसे गुणस्थानों में अलग अलग गुणस्थानों में अलग अलग उदय रूप वगैरह हो सकती है या उसकी विच्छित्ति होती है, नाम कर्म का ऐसा नहीं है। नाम कर्म के लिए क्या है कि उसके 5 अलग अलग काल बताए गए। उस विशिष्ट गति संबंधी उन प्रकृतियों का उदय, विग्रह गति में कुछ प्रकृतियों का उदय, जो 21 प्रकृतियों का उदय पाया जाता है। बाद में अनुपूर्वी का उदय मिट जाता है, अन्य कुछ प्रकृतियों का उदय शुरू हो जाता है, जिसे शरीर है, संसार है वगैरह, वो वहां पर शुरू हो जाती है। तो पहला है विग्रह गति काल या कारमान शरीर काल। जहां शरीर ग्रहण होता है उसको कहेंगे मिश्र शरीर काल या शरीर मिश्र काल, दोनों पद्धति से उसको कहा जाता है। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के समय से लेकर वहां पर भी परघात विहार गति या कि जिसको आतप उद्योत होगा उसका उदय शुरू हो जाता है, तो उसको कहेंगे शरीर पर्याप्ति काल। जब उच्छ्वास पर्याप्ति काल पूरा होता है उस समय से उच्छ्वास नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है, और भाषा पर्याप्ति पूरी होती है तब से स्वर नाम कर्म का उदय शुरू हो जाता है। बाद में ये सब प्रकृतियों का उदय चालू रहता है। तो कौन से गति में कौन से इंद्रिय वालों को क्या क्या बातें होती है उसकी बात हमने थोड़ी पढ़ी थी। पेज नंबर 42 पर आए हैं, उसके पहले थोड़ी रिविजन कर लेते हैं नाम कर्म के उदय काल संबंधी। तो हमने 5 काल कौन से देखे? एक तो विग्रह गति काल, मिश्र शरीर काल या मिश्र काल, शरीर पर्याप्ति काल, उच्छ्वास पर्याप्ति काल और भाषा पर्याप्ति काल। वो भाषा पर्याप्ति काल मरण तक पाया जाता है। विग्रह गति काल 1, 2 या 3 समय जहां जो पर्याय वाला जीव जीव है उसके अनुसार होता है, बाकी सारे अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त वाले हैं, उसमें जगन्य उत्कृष्ट के भेद हो गए। हमने नरक गति में भी देखे थे कि नरक गति में कौन सी प्रकृतियां उदय रूप होती है, तो कहीं पर भी प्रकृतियां कौन सी उदय रूप है उसके लिए 12 प्रकृतियां ध्रुवोदयी होती है। कौन सी भी गति के किसी भी जीव को किसी भी इंद्रियों वाले के वो 12 का उदय होगा। वो 12 हमने कौन सी गिनी थी? स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, तेजस कारमान, ये वर्णादि 4, अगुरु लघु और निर्माण, ये तो 9 तो फिक्स है, ध्रुव उदयी है। अभी बाकी जो है, एक तो गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, उस संबंधी गति के साथ उसका गत्यानुपूर्वी भी ले लेना विग्रह गति में, बाद में नहीं लेना। विग्रह गति में हमको 9 प्रकृतियां गिननी है। तो गति है गत्यानु 12 तो ध्रुव दी गई, 21 गिनना है ना, तो ये गति गत्यानुपूर्वी जाति। उसके बाद अभी शरीर संस्थान नहीं यहाँ लेना, संस्थान जब जागता है भव धारण करता है तब संस्थान का, नहीं तो अनुपूर्वी का कार्य क्या होगा, गति गत्यानुपूर्वी जाति हुआ। अभी त्रस बांदर और पर्याप्त या उसके अपोजिट जो कुछ होगा, यानी जो वहां त्रस या स्थावर बादर या सूक्ष्म पर्याप्त या अपर्याप्त, उनका उदय यहाँ शुरू हो जाता है। अभी हमने स्थिर अस्थिर वो दो जोड़ी दी है, बाकी जो बची है उसके स्वर बिना और तीन ले लेना वहां पर। कौन सी तीन है, दुर्भग या सुभग, दुर्भग आधे अनादे जो हो गई, और यशस कीर्ति अयशस कीर्ति, वो पहले 12 और ये 9 ऑप्शनल। 12 तो फिक्स है और ये 9 में से किसी को कोई होगी, तो ये 21 प्रकृतियों का उदय विग्रह गति में पाया जाता है। अब शरीर धारण करने के समय में क्या होता है, अनुपूर्वी का उदय मिट जाता है, वहां क्या क्या शुरू हो जाता है, वो शरीर नाम कर्म जिस गति का होगा वो। एक इंद्रिय हो गए तो केवल शरीर नाम कर्म, द्विंद्रिय हो गए तो द्विंद्रियादि अंगोपांग भी उसके साथ आएगा। पहले हम एक इंद्रिय की बात देखते हैं, एक तो शरीर नाम कर्म, दूसरा संस्थान नाम कर्म, फिर प्रत्येक या साधारण और उपघात, परघात बाद में उपघात, ये 4 प्रकृतियों का उदय एक इंद्रिय के लिए शुरू होता है। तो 21 में से एक निकल गई और ये 4 आई तो स्थावरों के 24 का हो जाता है। द्विंद्रियादियों के क्या होगा, हम तिर्यंश मनुष्य की बात करते हैं तो उसमें शरीर यानी औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपा, फिर उनके लिए तो प्रत्येक शरीर, क्योंकि साधारण वाला भेद तो एक इंद्रिय में होगा, प्रत्येक शरीर हो जाएगा, संस्थान यही चालू हो जाता है, एक सहनन चालू हो जाता है, और क्या लेंगे, उपघात, ये 6 शुरू हो गई, 21 में से एक गई और 6 आई, 26 का स्थान होता है। अब जो शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर क्या शुरू होता है, परघात, द्विंद्रिया होगी तो विहाय गति, और जिसको तिर्यंचों में एक इंद्रियों के आतप उद्योत होगा या द्विंद्रियादि को उद्योत होगा तो उनकी वो वहां गिनने। बाद में उच्छ्वास पर्याप्ति पूरी होने पर एक उच्छ्वास नाम कर्म, और द्विंद्रियादि हो गए तो स्वर नाम कर्म, भाषा पर्याप्ति, एक इंद्रियों के वो भाषा पर्याप्ति काल नहीं होता, उनके 4 ही काल होते हैं, और लब्धि अपर्याप्त उनके 2 ही काल होते हैं, विग्रह गति काल और मिश्र शरीर काल, क्योंकि उनकी आयु ही उतनी ही है। अब तिर्यंच एक नर गति की बात हमने देखी, नर नारकी के योग्य वहां प्रकृतियां गिन लेना, वो एक अंगोपांग है, वो दुर्भग अनादेय यशस्कृति, वो सब उसके साथ हमने देखी थी। तिर्यंच गति में स्थानों की बात चली थी, तो तिर्यंचों में एक इंद्रियों के कौन कौन से स्थान हो गए, उसको तो 21 वाला होगा, मिश्र में 24 हो जाते हैं, फिर परघात मिलाने से 24 का 25 होगा, 25 का 26 होगा, या कोई ऐसा जीव होगा कि पहले तो उसके 21 था फिर 24 हो गया, 24 से 26 हो जाता है परघात और उद्योत या आतप चालू हो जाएगा, और 26 से 27 होगा, यानी किसी के 21, 24, 25 और 26 हो गए, किसी के 21, 24, 26 और 27 हो गए, ये एक इंद्रियों के हो गए, यानी उसमें उद्योत सहित और उद्योत रहित वाले। अभी इनमें भंग निकालने की बात क्या हो रही है, भंग का अर्थ क्या है कि प्रकृतियों बदलने से स्थान उतना ही होता है, जैसे 21 वाला स्थान तो फिक्स है, पर्याप्त होगा तो पर्याप्त, अपर्याप्त होगा तो उसके तो बातें बताए, उसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज है, पर्याप्त अपर्याप्त और सूक्ष्म बादर, तो वहां 4 भंग हो सकते हैं 21 के स्थान में, और जो कॉम्बिनेशन यानी अलग अलग प्रकृतियां बदलने से, संख्या तो वही रहेगी, 21 वाला उसको स्थान कहेंगे, प्रकृतियों की संख्या 31 है तो उसको स्थान कहेंगे, और वो 21 प्रकृतियों में किसी के बादर है, किसी के सूक्ष्म है, किसी के पर्याप्त है, किसी के अपर्याप्त है, तो वो बदलने से वो भंग कहेंगे। 4 पॉसिबिलिटीज है ना, बादर में भी पर्याप्त अपर्याप्त हो सकते हैं, सूक्ष्म में भी पर्याप्त अपर्याप्त हो सकते हैं, तो ये 4 भंग हो गए। और जो उद्योत रहित वाले कहेंगे, और जो बाद में उद्योत वाले होने वाले हैं, उनके एक यशस कीर्ति के साथ एक बादर पर्याप्त का ही भंग होगा, 4 1 5, उसको 5 भंग कहेंगे। भंग किसे कहना उसकी बात कह रहे हैं। जरा जोर से बोलो उसमें। विग्रह गति में नहीं ले सकते। विग्रह गति में प्रत्येक साधारण का उदय नहीं है। जब मिश्र शरीर काल शुरू हो जाता है अब उसमें प्रत्येक और साधारण का भी भेद होगा, पर वो उद्योत रहित वालों में होगा। इसलिए उद्योत रहित वाले एकेंद्रियों में पर्याप्त अपर्याप्त, बादर या सूक्ष्म और प्रत्येक या साधारण, उनके 8 हो गए। और जो उद्योत बाद में चालू करने वाले हैं उनके लिए 1 भंग होगा, 9 भंग उनके हो जाते हैं। ख्याल में आते हैं बात, ये किस तरह से गिनना उसके। ये टेबल हमने देखा था एकेंद्रियों का, देख लो फिर से पेज नंबर 39 पर। एक वहां उन्होंने एक टेबल बना के दिखाया है कि आतप उद्योत रहित मिला 21 प्रकृतिक स्थान, प्र यानी प्रकृतिक स्थान यानी प्रकृति वाला स्थान। 5 भंग अभी हमने देखे थे ना, कौन से, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या अपर्याप्त। फिर 24वें स्थान में 9 भंग बताए। 9 भंग कैसे बताए, हाँ यानी उसमें यशस कीर्ति के साथ 1 ही भंग होता है। हाँ वो उद्योत वाली की बात बाद में बताएंगे, यहीं पर 9 भंग हो जाते हैं। और यशस कीर्ति के साथ बादर भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है, पर्याप्त भी हो सकता है, अपर्याप्त भी हो सकता है, साधारण भी है, प्रत्येक भी है। परंतु यशस कीर्ति के साथ 1 ही भंग होगा, बादर पर्याप्त प्रत्येक शरीर वाला। इसलिए ऐसे 2 ये 9 हो गए टोटल। उद्योत रहित वालों में 25 वाला भी स्थान होगा, वहां फिर 5 का भंग है, क्योंकि 25 वाला स्थान पर्याप्तों के होगा, शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर। अभी इसलिए वो अपर्याप्त वाला भंग यहाँ नहीं लेना है। तो कौन सा होगा वाला होगा, बादर या सूक्ष्म, पर्याप्त या बादर या सूक्ष्म, प्रत्येक या साधारण, उसके 4 और यश कीर्ति के साथ, और यश कीर्ति का 1, इसलिए 5 भंग। अयश कीर्ति के साथ दोनों हो सकते, बादर सूक्ष्म प्रत्येक साधारण, और यश कीर्ति के साथ 1 होगा। 26 में इसे लेने, इसलिए वहां 5-5 भंग बताए। अब उद्योत सहित वाले में देख लो, उद्योत सहित यानी वो कौन से जीव है बाद में पर्याप्त होने वाले, नक्की है बादर पर्याप्तों में ये भंग होगा। इसलिए उद्योत सहित वालों में 21 के स्थान पर 2 ही भंग बताए। बादर या सूक्ष्म पर्याप्त में लेना, नहीं पर सूक्ष्म में ये कहाँ होता है, सॉरी यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति, ये 2 भंग लेना। बादर पर्याप्त वाला ही लेना, सूक्ष्म नहीं लेना। उद्योत बाद में होने वाला है तो बादर और पर्याप्त ही लेना, पर किसी के यशस कीर्ति है, किसी के अयशस कीर्ति, इतने 2 भंग है। 24वें स्थान में भी ऐसा ही लेना, यशस कीर्ति के साथ बादर पर्याप्त और अयश के साथ बादर पर्याप्त। अब 26 के स्थान में ये 4 भंग हो गए। उद्योत सहित वाले होते हैं ना, हाँ, क्योंकि आतप के साथ 2 हो जाएगा, उद्योत के साथ 2 हो जाएगा, इसलिए बादर पर्याप्त, यश या अयश और आतप, बादर पर्याप्त, यश या रश और उद्योत, इसलिए 4 और 4 भंग हो गए। ये टोटल भंग बताए। ये मैं फिर से क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अभी हमको द्विंद्रिय में ऐसा ही देखना है, उद्योत सहित रहित वाले। अब ये हम पेज नंबर 42 पर आए हैं। द्विंद्रिय आदि की बात हमने पढ़ना चालू कर दी थी। देखो ये बात तो एक्चुअली 40 से शुरू हुई थी, थोड़ा देखकर फिर आगे बढ़ते। 40 प्रकृति, 40 के स्थान में, सॉरी 40वें पेज पर पहला जो पैराग्राफ है ना नया, विकलेंद्रिय जीवों में सामान्यता। विकलेंद्रिय कहने से द्विंद्रिय, तीन्द्रिय और चतुरेंद्रिय। तो उसमें कौन कौन से स्थान हो सकते हैं, तो उन्होंने सब इकट्ठे गिन लिए। 21 का स्थान होता है कब? विग्रह गति में। जब वहां पहुंच जाता है तो 26 हो जाते हैं, क्योंकि द्विंद्रियादि, अभी द्विंद्रिय है जीव है, तो औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग चालू हो जाएगा, वहां हुंड संस्थान चालू हो जाएगा, और संप्राप्त रूपाटी का सहनन का भी शुरू हो जाएगा, उपघात भी शुरू हो जाएगा। और हाँ, प्रत्येक शरीर ये 6 का उदय चालू हो जाएगा, तो ये 26 का हो जाएगा। 28 के स्थान में परघात और अप्रशस्त विहाय गति, 29 में उच्छ्वास, और 30 में दुस्वर। अब जो उद्योत सहित वाला हो गया, इन दोनों को इकट्ठा गिनना है, उनके पहले 21 का स्थान है, बाद में 26 का हो जाता है, और 28 के बदले उनके 29 का हो जाता है, 28 का उनके लिए नहीं, तो उनके परघात, विहाय गति और उद्योत एक साथ चालू हो जाते। तो 29 के बाद उसको 30 में उच्छ्वास और 31 में दुस्वर, इस तरह से उनके ये स्थान है, इसलिए सबको गिनकर यहाँ दोनों को इकट्ठा बता दिया। अब ये कौन से प्रकृतियां है हमको पता है, 21 में कौन सी, 12 वो ध्रुवोदयी, बाकी 9 तो ऑप्शनल जो है वो। यानी यहाँ भंग कितने हो गए 21 के स्थान में, कोई द्विंद्रिय पर्याप्त है, कोई अपर्याप्त है, समझ में आते हैं बात, उसमें बादल सूक्ष्म का सवाल ही नहीं है, तो पर्याप्त अपर्याप्त का, अयशस के साथ पर्याप्त अपर्याप्त, अयश के साथ पर्याप्त अपर्याप्त, और यश कीर्ति के साथ मात्र पर्याप्त, अपर्याप्तों के दोनों, सॉरी, अयश के लिए पर्याप्तों के भी हो सकती है अयश, अपर्याप्तों के तो होती होती है। हाँ, तो 3 भंग हो गए, एक इंद्रिय हमने 5 देखे थे, क्योंकि वहां बादर सूक्ष्म का भेद करके पर्याप्त अपर्याप्त का भी भेद किया था, यहाँ सारे बादर जीव है द्विंद्रिय से, इसलिए विग्रह गति में ऑप्शन कहाँ पर है, पर्याप्त या अपर्याप्त, और फिर यश या अयश वहां पर भी ऑप्शन है, तो अयश के साथ पर्याप्त, अयश के साथ अपर्याप्त, और यश कीर्ति के साथ मात्र पर्याप्त, क्योंकि यश कीर्ति अपर्याप्तों के नहीं होती, पर्याप्तों के यश भी हो सकता है अयश भी, इस तरह से 3 भंग हो गए। ये बात ख्याल में आएगी तो आगे का पढ़ना समझ में आएगा, आज जो यहाँ से शुरू करने वाले, ये समझ में है ना यहाँ तक बात। देखो ये जो 3 भंग की बात यहाँ लिखी है, पेज नंबर 41 लिखो, ये समाधान के बाद दूसरी लाइन, यश कीर्ति के उदय के साथ एक ही भंग होता है, कौन सा, पर्याप्त वाला, क्योंकि अपर्याप्त प्रकृति के उदय के साथ यश कीर्ति का उदय नहीं होता, अयश कीर्ति के उदय से ही 2 भंग होते हैं, क्योंकि पर्याप्त और अपर्याप्त के उदय के साथ अयश कीर्ति का उदय होना संभव है। अपर्याप्त के साथ तो अयश कीर्ति ही होती है, पर्याप्त के साथ यश भी हो सकता है, अयश भी हो सकता है। इस प्रकार यहाँ सब भंगों का योग 3 हुआ, यानी 21 प्रकृतियों में 3 भंग हुए, ये बात ख्याल में आई। अब उसके नेक्स्ट पैराग्राफ फिर दोबारा पढ़ते हैं अपना पक्का करने के लिए, इन 21 प्रकृतियों में से अनुपूर्वी को निकालकर, तिर्यंचानुपूर्वी थी ना यहाँ पर, शरीर ग्रहण करने के प्रथम समय में औदारिक शरीर, कुंड संस्थान, औदारिक शरीर अंगोपांग, असंप्राप्ता सुपाटिका सहनन, उपघात और प्रत्येक शरीर, इन 6 प्रकृतियों को मिला देने पर 26 प्रकृतियों वाला उदय स्थान होता है। यहाँ पर भी भंग 3, अयश के साथ पर्याप्त अपर्याप्त, और यश के साथ पर्याप्त, यानी वो 21 और 26 में इस तरह से 3 और 3 भंग हो गए। शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विंद्रिय जीव के, यानी यह भी पर्याप्त नाम कर्म वाला ही है, अपर्याप्त तो ये पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, वो तो पहले मर जाएगा। तो शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विंद्रिय जीव के पूर्वोक्त 26 प्रकृतियों में से अपर्याप्त को निकाल कर, निकाल कर नहीं वो अपर्याप्त आगे होते ही नहीं है, तो केवल पर्याप्त का ही उदय रहेगा। परघात पन अपर्याप्त और निकाला ने पर्याप्त है वहां पर, यानी वो संख्या कम नहीं होगी, 26 में से 25 नहीं होने वाली। निकालने का अर्थ वो नहीं है, जैसे विग्रह गति में हमने अनुपूर्वी को निकाला था तो उसकी एक प्रकृति कम हुई थी, वैसे नहीं यहाँ पर। अपर्याप्त को नहीं लिया, पर्याप्त को रखा, इसलिए 26 की 26 संख्या में क्या मिलाना भी, परघात और अप्रशस्त विग्रह गति मिला देने पर, पर्याप्तों के शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर विग्रह गति और परघात का उदय चालू हो जाता है। द्विन्द्रिय तीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय में अप्रशस्त विग्रह गति को ही रखना, पंचेन्द्रिय में फिर दो ऑप्शन रखेंगे। 28 प्रकृति का उदय स्थान होता है, यहाँ यश कीर्ति के उदय से ही एक ही भंग है, क्योंकि और अयश कीर्ति के उदय से ही भी एक ही भंग है, क्योंकि ये सारे पर्याप्त ही है, तो कोई पर्याप्त है तो यश कीर्ति वाला है, कोई है तो अयश कीर्ति वाला, इसलिए दो भंग हो जाएगा। 21 और 26 के स्थान में तीन तीन भंग देखे थे, यहाँ दो ही भंग होंगे, क्योंकि यहाँ भी प्रतिपक्षी प्रकृतियों का अभाव है, यहाँ सब भंग केवल दो है। भंगों का अर्थ भी समझ में आ रहा है ना, ये हमारा ये विषय हो गया है बहुत बार कर्मकांड में वगैरह, आप लोग नए हैं ना इसलिए दोबारा लिया। आन पान पर्याप्त यानी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विन्द्रिय जीव के पूर्वोक्त 28 प्रकृतियों में उच्छ्वास को मिला देने पर, देखो यहाँ उद्योत वाला भी नहीं लिया है, वो बाद में लेंगे, वो 28 के बदले उसको 29 कहेंगे, तो यहाँ 28 वाला जो है वो उच्छ्वास के मिला देने पर 29 प्रकृति के उदय स्थान होते हैं, यहाँ भी दो ही भंग होते हैं, सारे पर्याप्त ही है, कोई अयशस कीर्ति वाला है, कोई यशस कीर्ति वाला है। भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विन्द्रिय जीव के पूर्वोक्त 29 प्रकृतियों में दुस्वर के मिला देने पर 30 प्रकृतिक उदय स्थान होता है, अभी इनको भी एक दुस्वर ही नाम कर्म है, उसमें सुस्वर यहाँ ऑप्शन नहीं है, वो मनुष्यों में बाद में पंचेन्द्रिय तीर्यंचों में वगैरह लेंगे, तो यहाँ भी दो ही भंग होते हैं, कौन सा, एक यश वाला और एक अयश वाला। अब यहाँ तक बात ख्याल में आई ना, अब उद्योत सहित वालों की बात करेंगे, द्विन्द्रिय की, यहाँ से पढ़ना है अपने को। अब उद्योत के उदय सहित द्विन्द्रिय जीव के उदय स्थान कहने पर 21 और 26 प्रकृतिक उदय स्थान तो जैसे पहले कहे आए हैं उसी प्रकार कहना चाहिए, ये तो उसी प्रकार कहना चाहिए तो कह दिया, परंतु ये कौन सा है, उद्योत सहित बाद में होने वाला है, तो विग्रह गति में वो अपर्याप्त वाला नहीं कहलाएगा, तो विग्रह गति में यश अयश के दो ही भंग हो गए, और 26 के स्थान में भी दो ही भंग हो गए, यहाँ तीन तीन भंग नहीं हो गए। हाँ, प्रकृति वैसे ही है इतना कह दिया है, परंतु भंग दो दो ही हो गए, तीन तीन भंग यहाँ नहीं हो गए, ख्याल में आई बात ये, क्योंकि वो कौन सा जीव लेना है जो उद्योत बाद में, जिसको उद्योत का उदय होने वाला है, उद्योत सहित वाला लिया, ऐसा नहीं कि पहले अपर्याप्त थे बाद में पर्याप्त होकर उद्योत होला, ऐसा नहीं है, वो विग्रह गति में भी पर्याप्त नाम कर्म वाला जीव है, उसके यश अयश यश दोनों हो सकते हैं, वही जीव 26वें स्थान में आए उसको भी यश अयश दोनों हो सकते हैं, उसी के अभी उद्योत का उदय चालू हो जाएगा। यानी पहले तीन तीन भंग देखते थे, वो नहीं हो गए, दो दो ही हो गए, ये उन्होंने यहाँ क्लियर नहीं किया है, फिर भी हम पढ़ेंगे बाद में। फिर 26 के ऊपर यानी 26 के बाद परघात उद्योत और अप्रशस्त विग्रह गति तीन एक साथ चालू हो गए ना, इन तीन को मिला देने पर 29 प्रकृति उदय स्थान होता है। ये कल हमने करेक्शन किया था पिछले पेज पर, तो कल थे के सभी को, कोई आया नहीं था कल, नहीं नहीं आप कल नहीं थी क्या, वो यश का अयश किया था ना हमने, पेज नंबर हाँ पेज नंबर 40 पर, जहाँ अभी हमने विकलेंद्री की बात पढ़ी थी ना, बीच वाला पैराग्राफ, हाँ नीचे से तीसरी लाइन, उसमें दूसरी तीसरी लाइन में को वहाँ लिखा ना, उसके परघात उद्योत और वहाँ क्या लिखा है? नहीं नहीं उन आप में भी प्रशस्त लिखा है, अप्रशस्त करो और पीछे वो करेक्शन लिख के रखो, क्योंकि इसके लिए क्या है प्रूफ क्या है, ऊपर प्राकृत में देखो, ऊपर से चौथी लाइन परघात उज्जोद अपसत्थ विहाय गदीन, क्योंकि द्विंद्रियों में प्रशस्त विहाय गति का उदय ही नहीं होता, अप्रशस्त ही होना चाहिए, तो अप्रशस्त करो। उद्योत शुभ है, सभी शुभ नहीं जरूरी नहीं है, यह बंद की बात नहीं, उदय की चल रही है, जैसे सिर शुभ है और अस्थिर अशुभ है, बनती अलग अलग, उदय एक साथ हो रहा है। जैसे यश अयश कोई भी उदय हो सकता है, वैसे यहाँ पर भी, परंतु यहाँ अप्रशस्त का ही उदय होगा, उनके प्रशस्त का नहीं है, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय तक अप्रशस्त विहाय गति ही, दुर्भग अनादेय वही सब अप्रशस्त प्रकृतियां हैं। हाँ देखो अभी हम आते हैं 42 पेज पर, जहाँ हम पढ़ रहे थे, यानी पहला स्थान है 21 का, दूसरा है 26 वाला, परंतु वहां पर्याप्त का ही भंग लेना, पर्याप्त वाला नहीं लेना, यानी दो दो भंग हो गए, यश कीर्ति के साथ एक और अयश के साथ एक। अब 26 के ऊपर परघात उद्योत और अप्रशस्त विहाय गति, इन तीन को मिला देने पर 26 और 3 ये 29 वाला स्थान हो जाता है, उद्योत वालों का 28 वाला स्थान नहीं होगा, 21 26 के बाद 29 होगा डायरेक्ट। यश कीर्ति के उदय सहित एक भंग होता है और अयश कीर्ति के उदय सहित एक भंग, जैसे 21 में भी दो हुए थे, 26 में भी दो, यहाँ पर भी दो भंग हो गए। इस प्रकार यहाँ भंगों का योग दो होता है। फिर इन दो भंगों में पूर्वोक्त 29 प्रकृति उदय स्थान संबंधी दो भंगों को मिला देने पर 4 भंग होते हैं, क्योंकि 29 वाला स्थान कौन सा? उद्योत रहित वालों का था, उद्योत रहित वालों में भी 29 वाला स्थान था, परंतु उनका 29 वाला स्थान उच्छ्वास पर्याप्ति होने पर होता, और इनका 29 स्थान वाला वो तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर है, प्रकृतियां जुदी जुदी है, स्थान 29 का है, प्रकृतियां जुदी है, इसलिए वहां के दो भंग और यहाँ के दो भंग, टोटल 4 हो जाएंगे। समझ में आती है ना ये बात? प्रकृतियां देखो, उद्योत सहित वालों को 29 कब होता है? शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर, और उद्योत रहित वालों को 29 कब होता है? उच्छ्वास को मिला देने पर, उनका 26 के बाद 28 फिर 29 हुआ था, और इनके 26 के बाद डायरेक्ट 29 हुआ था, इसलिए वो भले स्थान 29 का है, प्रकृतियां जुदी जुदी है, इसलिए ये दो भंग अलग है, वो दो भंग अलग है, जहां सेम प्रकृतियां होती है वहां वो पुनरुक्त करके उसको निकाल देते हैं। समझ में ये बात? हाँ। ये 4 भंग हो गए 29 वाले। आनपान पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विंद्रिय जीव के पूर्वोक्त 29 प्रकृतियों में उच्छ्वास और मिला देने पर 30 प्रकृति को उदय स्थान होता है, यानी उद्योत वाले के ये 30 वाला कब होगा? जब उच्छ्वास पर्याप्ति मिलेगी तब, यानी उच्छ्वास नाम कर्म। यहाँ भी दो भंग होते, कौन से? यश वाला और अयश वाला। इनमें प्रथम 30 प्रकृति उदय स्थान संबंधी दो भंगों को मिला देने पर 4 भंग होते हैं, क्योंकि पहले वो 30 वाला भाषा पर्याप्ति वाला था, उद्योत रहित वाला, शरीर पर्याप्ति कहाँ पीछे जा रहे हैं अभी, जिसको उद्योत नहीं था उसको 30 कब हुआ था? जब भाषा पर्याप्ति हुई थी। और यहाँ 30 कब मिला? उच्छ्वास पर्याप्ति होने पर। तो उनके दोनों और दो चार भंग हो गए। अब लास्ट में भाषा पर्याप्ति से पर्याप्त हुए द्विन्द्रिय जीव के पूर्वोक्त प्रकृति में ये सब उद्योत सहित वालों की ही बात चल रही है। दुस्वर प्रकृति के मिला देने पर 31 प्रकृति उदय स्थान होता है, यहाँ भंग दो होते हैं, क्योंकि उद्योत रहित वालों को उनके तो भाषा पर्याप्ति पहले हो चुकी है, उनके 29 का ही स्थान था, 30 वाला तो इनको आ गया, सॉरी 31 वाला, पहले वाले को 21, 26, 28, 29, 30, 31 उद्योत सहित वाले को 31 वाला आएगा, कैसा आएगा, नहीं आएगा, 30 तक ही रुक जाता। हाँ सब भंगों का योग 18 होता है। अब यहाँ उन्होंने उसका टेबल लिखने की कोशिश की है, उद्योत रहित और उद्योत सहित, वहाँ एक इंद्रियों में एक के नीचे एक लिखे थे, यहाँ एक के सामने एक एक लिखा है, लेफ्ट साइड में उद्योग रहित है और राइट साइड में उद्योत सहित है। 21 प्रकृतियों वाले स्थान भंग उद्योत रहित में 3 हो गए, अयश के साथ पर्याप्त अपर्याप्त और यश के साथ पर्याप्त, और उद्योत सहित में 2 ही हो गए, यहाँ 3 लिखे हैं, वो 3 निकाल कर 2 करो। उद्योत सहित वालों में 2 ही भंग हो गए, पर्याप्त है तो यश और अयश 2 ही भंग हो गए, ये 3 के बदले 2 लिखो। 26 प्रकृति वाला उद्योत रहित वालों में भी 3 भंग होते हैं, पर्याप्त अपर्याप्त अयश के साथ और यश के साथ पर्याप्त, ये 3 ही भंग होते हैं। उद्योत सहित वालों में 2 ही हो गए, लास्ट टाइम हमने किए थे, आपके उसमें है क्या, नहीं 3 का 2 किया हो, तो उसके आगे जो लिखा है ना, ये 6 भंग लिखे हैं, ये 4 भंग पूर्व के ही समान होने से नहीं जोड़े गए, क्योंकि ये मूल प्राकृत में से नहीं लिखा है, उन्होंने अपने से लिखा है, उसमें बराबर किया है कि नहीं, हमको 6 के बदले 4 लिखा है कि नहीं लिखा। सातवें पुस्तक में से कोई करेक्शन किए नहीं उन्होंने। क्या करना है, समझ में आया मनीषा? देखो 3-3 था ना उद्योग सहित वालों में, वो 2-2 करना, और ये 6 भंग लिखा है उसके बदले 4 भंग लिखना, 3 2 बार है ना, उसके बदले 2-2 बार लिखो, 3-3 के बदले 2-2 लिखो। अब देखो उद्योत रहित वालों में 28 के 2 भंग है, और उद्योत सहित वालों को 28 का स्थान ही नहीं है, फिर 29 वाला उद्योत रहित वालों के 2 भंग है, उद्योत सहित वालों का भी 29 वाला स्थान शरीर पर्याप्ति के जगह आता है, इसलिए उसके 2 अलग है, वो सेम नहीं है, जुदे है। 30 वाला स्थान उद्योत रहित वालों में 2 भंग है, उद्योत सहित वालों में भी 2 है, वो उच्छ्वास पर्याप्ति के 2 है। 31 वाला इनको है ही नहीं है, क्योंकि उनकी भाषा पर्याप्ति ऑलरेडी 30वें स्थान में हो गई है, परंतु उद्योत सहित वालों के ये 2 है, पहले 2 और 2 वो गिनने नहीं, क्योंकि वो पुनरुक्त थे, इसलिए तो नीचे के गिनना है। तो देखो उद्योत रहित वालों में 3, 3, 6, 6, 12 होते हैं, उद्योत सहित वालों में 21 और 26 के पुनरुक्त है इसलिए गिनना नहीं है, और नीचे उसके 2-2 और 2-6 होते हैं, तो 12 और 6 टोटल 18 हो जाते हैं। हाँ वो उनको पहले ही हो गया था, सुस्वर नाम कर्म का दुस्वर का उदय हुआ, दुस्वर, ये समझ में आई बात, इसलिए वो पूरा दोबारा ली हमने सारे भंग वगैरह। अब आगे बढ़े, अब हमें द्विन्द्रिय तीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय इन तीनों विकलेन्द्रिय जीवों के उदय स्थानों के भंगों का योग चाहिए। उनमें भी ऐसे हो गए ना, 18-18 उनमें भी हो गए, किसमें? हाँ छेवी नहीं चार नहीं क्रॉस है, क्या है वहां क्या लिखा है? अरे बाप रे, क्या लिखा है? हो नहीं वो पर वो रहित वाला वो क्रॉस करो तो अच्छा है। नया कुछ करने जाते हैं या कभी कभी क्या है कि डीटीपी का कोई साइन होती है ना, और जो उसका जो पीडीएफ बनती है तो उसका कुछ अलग ही बन जाता है। हमने पहले पुस्तक बनाई थी उसमें लंबी डैश थी तो हर जगह उसका न न ऐसा आता था न, बाद में सब चेंज करवाया था उसको। हाँ देख फिर से, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरी तीनों विकलेन्द्रिय जीवों के उदय स्थानों के भंगों का योग चाहिए, योग यानी टोटल। अतएव 18 को 3 से गुणा कर देने पर 54 भंग हो जाते हैं। यहाँ तक बात ख्याल में आई मनीषा बेन? कोई कंफ्यूजन है? हाँ, यहाँ स्वामित्व आदि के विकल्प जैसे नारकी जीवों की प्ररूपणा में पहले कहे आए हैं उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए। विशेषता केवल इतनी है यानी वो किसके होगा स्वामित्व, यानी 21 वाला कौन सा है तो विग्रह गति में वगैरह वगैरह। विशेषता क्या है कि द्विंद्रियादि जीवों के 30 और 31 प्रकृतिक उदय स्थानों का काल जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट से, 30 और 31 यानी भाषा पर्याप्ति काल जिसको कहेंगे, उद्योत रहित वालों में भाषा पर्याप्ति का वो 30 वाला और उद्योत सहित वालों में 31 वाला है, वो कब तक होगा? वो अंतर्मूर्त कम करो और अपनी पूरी आयु ले लो। जघन्य काल तो अंतर्मूर्त होगा सबके लिए क्योंकि पर्याप्तों की जघन्य आयु अंतर्मूर्त होती है। उत्कृष्ट द्विंद्रिय की अलग होगी, उत्कृष्ट जो 12 वर्ष होती है, तीन्द्रिय की अलग होगी 49 दिन रात, और चतुरिंद्रिय के 6 मास वो अलग होगी। बाकी तो सब ऐसा ही, 54 तो भंग बताए परंतु उसका काल कितना है ये पूछेंगे भाषा पर्याप्ति का, तो वो बता रहे हैं। विशेषता यह है कि द्विंद्रियादि जीवों होने के लिए अंतर्मूत लगता उसको माइनस करना, तो बाकी जो रिमेनिंग है यानी भाषा पर्याप्ति पूरी होने के समय से लेकर आगे गिनना है। तो कहते 30 और 31 प्रकृति उदय स्थानों का काल जघन्य से अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त प्रमाण आयु वाला जीव लिया, और उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त कम क्रमशः 12 वर्ष द्विंद्रिय के लिए 49 रात्रि दिवस, ये अंतर्मूर्त कम ये तीनों को लगा लेगा क्योंकि तीन्द्रिय की उत्कृष्ट आयु 49 दिन रात है, और 6 मास यानी अंतर्मूर्त कम 6 मास। नारकियों में हमने कैसे दिखा था अंतर्मूर्त कम 10,000 वर्ष और अंतर्मूर्त कम 33 सागर, वैसे यहाँ पर लगाना है। अर्थात 30 और 31 प्रकृति का उदय स्थानों का जघन्य काल तो तीनों विकलेन्द्रिय जीवों के अंतर्मूर्त ही होता है यानी उसकी जघन्य आयु, उस वो अंतर्मूर्त से भी एक अंतर्मूर्त वो कम करके अंतर्मूर्त ही रहेगा, और उत्कृष्ट काल द्विंद्रियों के अंतर्मूर्त कम 12 वर्ष, तीन्द्रियों के अंतर्मूर्त कम 49 रात्रि दिन, और चतुरिंद्रिय जीवों के अंतर्मूर्त कम 6 मास होता है। अब पंचेंद्रिय तीर्यंचों में बताएंगे, तीर्यंच गति की बात चल रही है ना, तो पंचेंद्रिय तीर्यंचों में विग्रह गति में कितनी प्रकृतियों का होगा उदय? 21 ही होगा, और वहां मिश्र में काल में कितने का होगा? 26 का उनके भी होगा, और उनमें ऐसे हो गए सारे, फर्क कितना होगा कहाँ पर होगा? सुस्वर दुस्वर का फर्क पड़ेगा, दुर्भग सुभग का फर्क पड़ेगा, ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसमें भंगों में डिफरेंस पड़ेगा। स्थान तो यही होगे, सहनन छह के लेंगे, अभी बहुत सारे भंग होने वाले, स्थान यही है, भंग एक्स्ट्रा हो गए क्योंकि ऑप्शनल प्रकृतियां बढ़ेगी। स्थान 21 का होगा, 26 का होगा, किसी को 28, 29, 30 होगा, किसी को 29, 30, 31 होगा, यही हो गए द्विंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के स्थान। यहाँ भंग द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय में भंगों की अपेक्षा उनका इकट्ठा कथन कर दिया, हर एक के 18 18 18 भंग थे। अब यहाँ भंग बताएंगे, अभी जहाँ जहाँ ऑप्शन ज्यादा हो सकता है ना, सहनन भी 6 हो सकते हैं, संस्थान भी 6 हो सकते हैं, हाँ तो ऑप्शन बहुत है यहाँ पर। और बाकी वो जो दुर्भग सुभग यशिकीति अशिकीति आदे अनादे उसमें भी डिफरेंस होगा। अब हम पढ़ेंगे, पढ़ने के पहले थोड़ा अंदाजा हम अपनी बुद्धि से ले सकते हैं ना। पंचेंद्रिय तिर्यंच सामान्य से नहीं, सभी उद्योग सहित रहित सबको गिनेंगे एक साथ, 21 26 28 29 30 और 31 प्रकृति के 6 उदय स्थान होते हैं, परंतु जिस किसी के 5 ही हो गए, उद्योत वाले के अपने 5, उद्योत सहित वाले के अपने 5, इसके रहित वाले के अपने 5, पर इकट्ठा सबको गिनाने हैं इसलिए 6 गिना है, 21 26 28 29 30 31। यानी किसी को 21 26 28 29 30 हो गए, किसी को 21 26 29 30 31 हो गए। उद्योत के उदय से रहित पंचेंद्रिय तिर्यंच के 5 उदय स्थान होते हैं, क्योंकि उसके 31 प्रकृतियों का उदय स्थान नहीं होता। उद्योत के उदय सहित पंचेंद्रिय तिर्यंच के भी 5 ही उदय स्थान होते हैं, क्योंकि उनके 28 प्रकृतिक उदय स्थान नहीं होता। इसका अर्थ अभी ख्याल में आ रहा है ना। अब उद्योत के उदय से रहित पंचेंद्रिय तिर्यंच के उदय स्थान कहने पर, हमने इंद्रियों के तो गिने थे, अब यहाँ पंचेंद्रियों के गिनने हैं। अट्ठाईस वाला इसलिए नहीं होता कि 26 के बाद उनके परघात विहाय गति और उद्योत तीन का एक साथ उदय होता है, उसका 26 के बाद 29 हो जाता है डायरेक्ट। ये हमने द्विंद्रिय में देखा था ना, इसे यहाँ पर भी देख, द्विंद्रिय के सामने लिखा ना टेबल, वो उद्योत सहित रहित वालों को, ऐसे यहाँ पर भी पंचेंद्रिय में सेम है, केवल अभी उसमें प्रकृतियां अनेक है, जो किसी को प्रशस्त विहाय गति है, किसी को अप्रशस्त है, किसी को सुस्वर है, किसी को दुस्वर है, दुर्भग, यानी यहाँ भंग बहुत ज्यादा होने वाले। अब कहाँ कितने भंग है उसको बताएंगे। यहाँ 21 प्रकृतिक उदय स्थान होता है। देखो उद्योत के उदय से रहित वालों के अभी स्थान गिना रहे हैं, यह 21 प्रकृतिक उदय स्थान, वो 21 प्रकृतिक गिना रहे हैं। जैसे हमने 12 तो ध्रुवोदयी देखी थी, फिर गति गत्यानुपूर्वी जाति वगैरह वगैरह, उसमें भी भेद कहाँ होगा पंचेंद्रिय कहने से, कोई पर्याप्त हो गए कोई अपर्याप्त हो गए। यहाँ पर तीन ही भंग ऐसे भी हो गए ना, यशस कीर्ति या यशस कीर्ति, उसमें दूसरे भी हो गए, सुभग दुर्भग भी हो गए यहाँ पर, हाँ उसकी भी बातें होगी। देखो फिर यहाँ से गिनते हैं, तिर्यंच गति पंचेंद्रिय जानति, तेजस और कारमान शरीर, वर्ण गंध रस स्पर्श, तिर्यंच गति प्राज्ञान पूर्वी, अगुरु लघु त्रस बादर। अब पर्याप्त और अपर्याप्त में से कोई एक, देखो ऑप्शन कहाँ कहाँ है वो देखो, यानी ये दो आ गए ना, पर्याप्त अपर्याप्त में से कोई एक, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, ये दोनों ही उदय रूप होती है, सुभग और दुर्भग में से कोई एक, ये और एक ऑप्शन आ गया, आदे और अनादेय में से कोई एक, यश कीर्ति और अयश कीर्ति में से कोई एक, हाँ चार ऑप्शन आ गए। और निर्माण, इन 21 प्रकृतियों का एक ही स्थान होता है। यहाँ पर्याप्त के उदय सहित सुभग दुर्भग आदे अनादे और यश कीर्ति अयश कीर्ति विकल्पों से 8 भंग होते हैं। यानी पर्याप्तों में वो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों ही हो सकती है, और अपर्याप्त के उदय सहित केवल एक ही भंग है। अपर्याप्त में सभी वो अप्रशस्त प्रकृतियों के ही उदय है, पर्याप्त में दोनों हो सकते हैं। पहले केवल यश अयश का ही भेद था, यानी ये आठ जो भेद है दो 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 करके, हाँ वो तो पर्याप्तों में हो गए, यानी पर्याप्तों में सुभग दुर्भग आदे अनादे यश अयश, ये दो दुनी चार दुनी आठ, समझ में आई ना बात। पहले आठ ऑप्शन थे, हमने चार ऑप्शनल देखे थे, परंतु वो चारों ऑप्शनल सब में नहीं होते। पर्याप्त अपर्याप्त दो फिक्स रखो, पर्याप्तों में सुभग दुर्भग आदे अनादे यश अयश, अपर्याप्तों में अनादे दुर्भग अनादे अयश, इनका एक ही पूरा का मिलकर एक ही भंग होगा ना। अपर्याप्त के साथ सारे अप्रशस्त प्रकृतियां ले लेना, और पर्याप्तों के साथ, हाँ ये तीन का ऑप्शनल लेना, इसलिए उसके आठ भंग हो गए, समझ में ना। आठ इसके और उसका एक, नौ हो जाते हैं। नौ कैसे हुए समझ में आई बात। अपर्याप्त के साथ दुर्भग अनादेय अयश कीर्ति, यानी वो चारों अप्रशस्त आ गए। पर्याप्त को एक फिक्स रखो, पर्याप्त को लिया, उसके साथ सुभग या दुर्भग आदेय अनादेय यशस कीर्ति या अयशस कीर्ति, उसके आठ हो गए, इसलिए टोटल नौ हो जाएंगे, यानी सब भंगों का योग नौ होता है। ये लास्ट में उन्होंने लिखा ना यहाँ पर कि फिर से नीचे से चौथी लाइन उसकी पढ़ती हूँ। पर्याप्त के उदय सहित सुभग दुर्भग आदे अनादे और यशस कीर्ति अयशस कीर्ति विकल्पों से आठ भंग होते हैं, और अपर्याप्त के उदय सहित केवल एक ही भंग है, क्योंकि सुभग आदे और यशस कीर्ति प्रकृतियों के साथ अपर्याप्त का उदय नहीं होता, या अपर्याप्त के साथ उसका नहीं होता, एक ही बात है। अब इन सब भंगों का योग नौ है, यहां तक समझ में आई बात। ये कौन सी की बात चल रही है अपनी, विग्रह गति वाला 21 में नौ भंग हो गए। अब 26 वाला स्थान देखते हैं। शरीर ग्रहण कर लेने पर आनुपूर्वी को निकाल कर औदारिक शरीर अभी छह संस्थानों में से एक, कोई एक संस्थान लिया, छह संस्थानों में से कोई एक संस्थान, परंतु अभी जो अपर्याप्त है उसको हुंडक संस्थान ही होगा। हाँ, औदारिक शरीर अंगोपांग छह सहननों में से कोई एक सहनन, उपघात और प्रत्येक शरीर, पंचेंद्रिय तो प्रत्येक शरीर ही होगा सबको, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। इन छह कर्मों के मिला देने पर 26 प्रकृति का उदय स्थान होता है, स्थान तो 26 का नक्की हो गया। अभी भंग निकालने के लिए यहाँ पर्याप्त के उदय सहित, अभी ऊपर तो केवल सुभग दुर्भग आदे अनादे यश ईशेष कीर्ति था, वो यहाँ पर भी लेना, उसके साथ साथ और क्या क्या लेना है, छह संस्थान और छह सहनन। पर्याप्त के साथ इतने विकल्प है, तो पर्याप्तों के भंग कितने हो गए, तो देखो सुभग दुर्भग वाले दो, आदे अनादे वाले दो, यश यश वाले दो, संस्थान के छह और सहनन के छह, इन सब को रखकर आपस में गुणा करो, दो गुना दो गुना दो गुना छह गुने छह, ये दुनी चार दुनी आठ सक, अट्ठेचालीस इंटू सात 288 भंग होते हैं। ये समझ में आई बात, भंग कैसे निकालना। अब अपर्याप्त के उदय सहित एक ही भंग है, क्योंकि सारे अप्रशस्त प्रकृतियां लेना उसके साथ, तो एक भंग उसमें मिला देना, क्योंकि शुभ प्रकृतियों के साथ अपर्याप्त का उदय नहीं होता। यहाँ सब भंगों का योग 11 कम 300 अर्थात 289 होता है, 289। पहले हमने 9 देखे थे, यहाँ ऑप्शनल बहुत है, इसलिए यहाँ टोटल 289 हो जाते हैं। यहाँ भंगों के विषय में निश्चय उत्पन्न कराने के लिए ये गाथाएं कहने योग्य है, इन्हें भंग कैसे निकालना, उसकी पद्धति क्या है, उसकी बात यहाँ बताएंगे गाथाओं की। ऊपर जो 7 नंबर लिखा है ना, वही गाथा है गोमरसार जीव कांड में भी ली हुई है। संखातः पत्थारो पर्यटन नठतः समुद्दिठम एदे पंचवियप्पा ठान समुक्कीर्तनम नेया। ये स्थान समुत्कीर्तन यानी स्थानों की यहाँ चर्चा चल रही, समुत्कीर्तन यानी कथन चल रहा है, तो स्थानों में हम यहाँ भंग भी देख रहे हैं। जैसे यही बातें हमने वहाँ प्रमाद के भेदों में, कैसे प्रमाद के भेदों को निकालना है, वो कौन से वाला है प्रमाद, उसकी संख्या भी निश्चित कर सकते हैं और वो कौन सा वाला कथन करना, क्योंकि ये क्या है, सारे कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन से एक के साथ हम एक एक को लगा सकते हैं। तो यहाँ इसका अर्थ देखते हैं, फिर उसका अर्थ भी और स्पष्ट करेंगे। संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, अब ये सब नाम नए हैं, उसका अर्थ देखेंगे अभी। नष्ट और समुद्दिष्ट, इन 5 विकल्पों का स्थान समुत्कीर्तन जानना चाहिए, यानी इनमें ये सब संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट वगैरह क्या क्या है वो सब लगाना चाहिए। यही बात जरा पेज नंबर 46 निकालो। थोड़ा विशेषांक पढ़ लेते हैं, फिर और हम अन्य भी बातें देखेंगे। देखो ये सभी गाथाओं में क्या बताने जा रहे हैं उसकी बात यहाँ बताई। पूर्वोक्त 7 गाथाओं में यह बतलाया गया है, जब अनेक पिंडों के अंतर्गत विशेष पदों के विकल्पों से भिन्न भिन्न भंग बनते हैं। अनेक पिंड ने कैसे, अभी हमने देखे थे ना, सुभग दुर्भग, आदे अनादेय, ये एक एक जो ग्रुप अलग अलग था, उसके अंतर्गत विशेष पदों के विकल्पों से, यानी जैसे संस्थान में तो 6-6 है विकल्प, संस्थान में, सहनन में, बाकी किसी किसी में 2-2 है ना, तो वे विशेष पद हो गए। तो संस्थान एक पिंड हुआ और उसके विशेष पद हो गए 6, अलग अलग संस्थान, अलग अलग सहनन, उसके वो विशेष हो गए। तो कहते भिन्न भिन्न भंग बनते हैं, यानी उनके कॉम्बिनेशन से ये भंग बन जाते हैं। तब उन सब भंगों की संख्या किस प्रकार निकाली जाए, उस संख्या प्रमाण, यानी टोटल भंगों की संख्या निकालना है, उसको यहां संख्या कह दिया। उस संख्या प्रमाण सब भंगों को क्रम से जानने के लिए, क्रम से नहीं, टोटल संख्या तो बताई पर आपको गिनाओ अभी, तो सारी प्रकृतियों हम पर्याप्त प्रकृति के साथ गिनाएंगे, सारे को अपर्याप्त के साथ गिनाएंगे, फिर पर्याप्त के साथ वो शुभ प्रकृतियां भी लेंगे, अशुभ भी लेंगे, तो उसको क्रम कैसा देना, ये भी निश्चित तरीका है, हम चाहे वो क्रम से नहीं चलेगा, तो उसके लिए वो क्रम से जो जो वहाँ एक्स्ट्रा जो ना पिंड जो है ना, जैसे सुभग है, दुर्भग है, आदे अनादे है, उसको क्रम से कैसे लिखना, 6 संस्थानों से नाम क्रम से कैसे लिखेंगे, फिर हर एक का पहला पहला भेद लेंगे, फिर बाकी सब एक को फिक्स रखेंगे, बाकी में चेंजेस करते रहेंगे। इसको पहला तो प्रस्तार फैला कर लिखना, उसको कहेंगे प्रस्तार, फिर उसमें एक एक क्रम से जो चेंज होता है उसको कहेंगे अक्ष परिवर्तन। अब यहाँ क्या बताते देखते। तो उन संख्या प्रमाण सब भंगों को क्रम से जानने के लिए, अभी हमने कौन से ये 288 भंगों तो पर्याप्तों पे लगाए, अभी उनको क्रम से नंबरिंग करो, वो आना चाहिए, उसमें से पहला भंग कौन सा, दूसरा भंग कौन सा, तीसरा भंग कौन सा, डायरेक्ट पूछेंगे 50 नंबर का भंग कौन सा, तो आपको वो आना चाहिए। वैसे गिनते नहीं बैठना, पहला ये दूसरा, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट 50 का नंबर का इसे निकालना, उसका तरीका है। तो कहते कि संख्या प्रमाण सब भंगों को क्रम से जानने के लिए, वो जानने का जो तरीका है ना, किस किस प्रकार विस्तार किया जा सकता है, उस विस्तार से, ये वो जो विस्तार करके लिखना उसको कहेंगे प्रस्तार। किस प्रकार भंगों में परिवर्तन होते हैं, यानी वो एक भंग फिर दूसरा भंग फिर तीसरा भंग, जिसको अक्ष परिवर्तन भी कहते हैं, किसी स्थान विशेष की क्रम संख्या मात्र के उल्लेख से, यानी स्थान विशेष की क्रम संख्या बताई, तो ये अमुक इतना 200 और अभी 26 वाला स्थान है, और उसमें हमको 288 भेद हो पर्याप्त के देखे थे, हमने 200 नंबर का स्थान उसका संख्या बता। तो क्रम संख्या मात्र, क्रम संख्या उसका 200 नंबर का बताओ, उस स्थानवर्ती विशेषों को कैसे जाना सकता है, यानी फिर उसका बोलो ये सारे वो तो गिनो उसको, या क्या करेंगे, विशेषों के नाम बताए, अमुक 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 है तो उसका नंबर बताओ, नामोल्लेख के नामोल्लेख से उसकी क्रम संख्या किस प्रकार जानी जा सकती है, ये सब अभी इन गाथाओं में बताया। गाथा सात में इन्हीं प्रक्रियाओं के, ये बराबर लिखना, प्रक्रियाओं के, ये जो सारे प्रक्रिया है उसके नाम बताएं। मास नामों का उल्लेख किया है, भंगों के प्रमाण की संख्या उसको संख्या कहते हैं, यानी टोटल कितने भंग हो गए उसको कहेंगे संख्या, उस संख्या प्रमाण भंग प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रस्तार, यानी किस रूप से वो पिंड को लिखना किस विधि से उसको कहेंगे प्रस्तार, उत्तरोत्तर एक एक विकल्प के नाम परिवर्तन को परिवर्तन, इसको अक्ष परिवर्तन भी कहते हैं, यानी वो एक एक भंग फिर दूसरा भंग फिर तीसरा भंग, क्रमिक संख्या के उल्लेख से विकल्प के विशेषों को जानने के प्रकार को नष्ट, यानी संख्या बताई आपको 25 नंबर की संख्या बताई, अब वहां का कौन सा होगा उसका पूरा नाम बताओ, तो उसको कहेंगे नष्ट, संख्या बताइए उसका नाम बताना आपको वो कहेंगे नष्ट, और विकल्प विशेष के नामोल्लेख से आपको पूरा नाम बता देंगे, उसकी क्रमिक संख्या को जानने के प्रकार को समुद्दिष्ट कहा है। अब देखो यही बात हमने प्रमाद के प्रकरण में जीव कांड में भी देखी, ये नष्ट समुद्दिष्ट वगैरह वगैरह किसको कहना, प्रमाद का भेद मंजे छठा गुणस्थान ना, गुणस्थान में आएगा ये। हाँ वहां तो हमने देखे ना कितने 37,500 भेद निकाले थे प्रमाद के, जीव कांड ये वो प्रमाद पर समझाना आसान है, फिर हम यहां आएंगे। अब ये जीवकांड में है, ये जीवकांड जो गुणस्थान प्ररूप है पहला भाग, उसमें 35 गाथा की टीका में ये बत, पेज नंबर यहाँ का 85 है हिंदी का। देखो ये प्रमाद जो है उसके भेद कितने होते हैं, तो मुख्यतः अगर भेद करेंगे हम तो क्या क्या होता है उसमें, एक तो विकथा, चार विकथाएं होती है, फिर कषाय, कषाय क्रोधमान माया लोभ, फिर इंद्रिय यानी जिस इंद्रिय का लोलुपी है इंद्रिय, निद्रा और स्नेह, ये मूल भेद है। कितने हुए टोटल, चार विकथा, चार कषाय, आठ हो गए, पांच इंद्रिय, हाँ 15 हो गए ना। अभी इसमें हमको क्रम से लगाने, क्रम से कैसे लगेंगे, किसी पर्टिकुलर विकथा करने वाला उस समय उसका कौन सा कषाय है, उस समय वो किस इंद्रिया में लोलुपी है, और निद्रा और स्नेह कह देना। तो इनके भंग कितने हो गए, तो हमारे पास विकथा चार है, चार मल्टीप्लाइड बाय कषाय चार, 16, और पांच इंद्रिय 80 भेद हो गए, संख्या होगी 80। तो 80 में से हम आपको बताएंगे 50 नंबर का बता दो, तो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए कोई तरीका बताएंगे, तो उसका प्रस्तार कैसे करना, उसका संख्या कैसे निकाल, ये जो तरीका हाँ अभी हम बताएंगे आपको, फिर वो निकालने की विधि भी बताएंगे, तो ये आसान हो जाएगा। हाँ देखो अभी पहले हम पढ़ते हैं उसका अर्थ प्रमाद के व्याख्यान में, मैं जीवकांड की बात पढ़ रही हूँ। संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट और समुदिष्ट, ये पांच अभी हमने नाम देखे थे ना, उसी की बात वहां हम जीवकांड पेज नंबर 85। आपके पास जीवकांड है क्या? क्या क्या एक मिनट, है ना, वो कैसे आलाप वगैरह है वो बताएंगे, परंतु वो समझाने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हैं ना, यहाँ समझना आसान है क्योंकि यहाँ उसकी विधि भी बनाई, ये कैसे निकालना है क्योंकि हमको मालूम है ना सब, तो इसमें आसान पड़ेगा। वो गूढ़ यंत्र जिसको कहते हैं, वो यंत्र कैसे बनाना उसकी भी विधि है, भले इसमें समय जाएगा परंतु ये विषय अच्छी तरह से ख्याल में आ जाएगा। वहाँ का पुराना हमने 107 नंबर लिखा था, पर यहाँ 85 है, वो ढूंढारी था नहीं 85 हिंदी पेज में यहाँ लिख, पीछे मैंने 108 पेज लिखा था पर वो ढूंढारी का होगा। देखो अभी मैं पढ़ती हूँ इसको, प्रमाद के व्याख्यान में जहां जहां ये ऐसी जिसको कहेंगे ना भंग निकालने हैं, वहां यही पद्धति है, हम प्रमाद में ये सीख रहे हैं, बाद में हमारे विषय पर लगाएंगे। संख्या, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, समुद्दिष्ट, ये पांच प्रकार जानना। अभी हमने जो देखी थी ना, यही पांच नाम आए थे, स्थान समुत्कीर्तन में बताए, वहां तो वो प्रमाद के प्रकरण में थे, वहां प्रमादों के आलाप को कारणभूत जो अक्ष संचार के निमित्त का विशेष वह संख्या है। आलाप यानी कथन, प्रमाद का कथन करना है तो उसमें जो हमने बोल, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तीसरा, टोटल जितने आते हैं उसको कहेंगे संख्या। पुनश्च इनको स्थापन करना वह प्रस्तार है, जैसे हम प्रमाद के भेद देखे हमने, विकथा है चार, तो विकथा वाला एक वो पिंड हुआ और उसके चार अलग अलग नाम हमने लिख दिए, कषाय एक नाम लिख दिया, उसके आगे क्रोधमान माया लोभ लिख दिया, ये सब इस तरह से लिख देना उसका नाम है प्रस्तार। पुनः अक्ष संचार परिवर्तन है, परिवर्तन है एक भंग फिर दूसरा, कैसे पलटना, किस कहां से पलटना, किसको फिक्स रखना और कहां से पलटना, उसको कहेंगे अक्ष संचार। संख्या को धरकर अक्ष लाना नष्ट है, यानी आपको संख्या बताइए इतने नंबर का बता दो और फिर आपको ये पूरा बताना है, उसको आलाप कहेंगे, उसका कथन करना, उसको कहेंगे वो नष्ट। और अक्ष को धरकर संख्या का लाना समुदिष्ट है, आपको पूरा नाम बताया जाएगा, अमुक विकथा वाला, अमुक कषाय वाला, अमुक इंद्रिय वाला, ये कौन सा जीव, किसकी संख्या, उसकी कौन से नंबर का प्रमाद है वो निकालना, उसको कहेंगे समुदिष्ट। यहाँ भंग को कहने का विधान वह आलाप जानना, उसको आलाप कहते हैं। पुनश्च भेद और भंग का नाम अक्ष जानना, और एक भेद अनेक भंगों में क्रम से पलटता है, एक भेद से दूसरा भंग, उसके भंग एक क्रम जो है, क्रम से पलटने को अक्ष परिवर्तन कहते हैं। पहला भंग बताएंगे, कहाँ पलटना होता है वो बताएंगे सब, उसको अक्ष परिवर्तन कहेंगे, सारा अक्ष संचार भी कहेंगे। पुनश्च जितने वा भंग हो उतने प्रमाण का नाम संख्या जानना, यानी समुदिष्ट में क्या हम संख्या लाते हैं। विशेषार्थ, ऊपर हमने प्रमाद के 15 भेद देखे, ये मैंने अपनी ओर से देखे, कौन से 15, चार विकथा, चार कषाय, पांच इंद्रिय और वो दो, उसमें मुख्य पांच प्रकार है, विकथा, कषाय, इंद्रिय, निद्रा और स्नेह, ये पांच अलग अलग जुदे जुदे हमने देखेंगे। इनमें से विकथा, कषाय, इंद्रिय के क्रम से चार, चार और पांच भेद होते हैं, ये सब एक जीव के एक साथ तो होते नहीं है, चार में से एक विकथा, परंतु विकथा के साथ कषाय होगा, इंद्रिय होगा, वो एक साथ होते हैं, पर विकथा में से कोई एक विकथा होगी, कषाय में से कोई एक कथा कषाय होगी, तो कहते हैं चार में से एक विकथा, चार में से एक कषाय, पांच में से एक इंद्रिय लोलुपता, एक निद्रा और एक स्नेह, इस तरह एक साथ पांच प्रमाद होते हैं, परंतु इनके भेदों को पलटाने से अलग अलग संयोगों द्वारा अलग अलग भंग होते हैं, जो सब मिलकर, अभी इनकी संख्या एक के आगे लिखे हम उसका गुणा करेंगे, चार गुणा चार गुणा पांच गुणा एक 80 भंग हो गए टोटल। इन भंगों को क्रमवार उसको पहला दूसरा तीसरा नंबर देना पड़ेगा आदि कहना उसे संख्या कहते हैं। टोटल कितने हो गए हमारे 80 भंग हो गए, उसकी संख्या इन्हें एक नंबर का है, ये 10 नंबर का है, 50 नंबर का है, उसको संख्या कहेंगे। अब विशेष संख्या की उत्पत्ति का अनुक्रम कहते हैं। ये जो हमने देखे थे विकथा कितनी कितनी क्या, उसको आपस में गुणा करने से हमको टोटल मिल गई थी। अब उसको प्रस्तार देखेंगे कैसे उसको लिख देना, उसको प्रस्तार कहेंगे। देखो प्रथम विकथा रूप प्रमादों के प्रमाण का विरलन कर, विकथा कितने चार है, विरलन करना है ने एक 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 लिख देना, ये है विकथा, एक 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 बिखेर देना चार, उसको कहते हैं विरलन करना। एक एक अलग बिखेर कर पश्चात क्रम से इस विरलन के एक एक भेद के प्रति एक एक के ऊपर का प्रमाद पिंड स्थापन करना। दूसरा प्रमाद पिंड कौन सा है, तो कषाय वाला है। उनको मिलाकर प्रस्तार होता है, सो कहते हैं विकथा प्रमाद का प्रमाण चार, उसको विरलन करके क्रम के स्थापित करके ये एक 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 हुआ। उसके ऊपर दूसरा कषाय नामक प्रमाद का पिंड, पिंड ने समुदाय, उसका प्रमाण चार, ये कषाय भी चार है, उससे विरलन रूप स्थापे हुए नीचे के प्रमाद उनके एक एक भेद प्रति देना। यानी वो एक एक में एक एक विकथा में चार चार कषाय हो सकते हैं ना। विकथा कौन सी है, जैसे स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा वगैरह, अवनिपाल कथा, तो उसमें क्या है विकथा एक एक में क्रोध मान माया लोभ चारों पॉसिबल है। तो पहले चार विकथा जुदी जुदी एक 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 लिखे, हर एक के ऊपर चार चार लिख दिए। यानी एक एक विकथा के भेद के ऊपर चार चार कषाय स्थापन करना, यानी टोटल कितने यहाँ तक कितने हो जाएंगे, चार 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 16 हो गए, यहाँ पर यहाँ तक 16 हो गए। अभी उसके बाद जो नया जो दूसरा प्रमाद पिंड वो इंद्रिय पिंड इसके ऊपर बताएंगे वो कैसे करना। ये चार लिखे ना, यानी इसमें भी क्रोध मान माया लोभ लिखेंगे, यानी एक एक के ऊपर एक एक करके चार चार आ जाएगा, यानी एक के ऊपर एक 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 लिखेंगे हर एक के एक एक के ऊपर, और इसमें पांच इंद्रिय हर एक के ऊपर पांच अलग अलग आ जाएगा। एक विकथा के साथ क्रोध को ले लो तो वो सारे पांचों इंद्रियों में लोलुपता, किसी के स्पर्शन इंद्रिय में, किसी के रसना इंद्रिय में, ऐसे हो सकता है कि नहीं। यानी एक विकथा फिक्स करो, एक कषाय फिक्स करो, उसमें ये पांच अलग अलग हो सकते हैं, समझ में आई बात। यानी एक विकथा के माने में चार कषाय और हर एक में पांच पांच इंद्रिय, नहीं होता ना, केवल एक के ऊपर पांच लिखने से नहीं हुआ, चारों में पांच पांच होते हैं। यहाँ एक 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 लिख दिया हमने, इसमें पांच 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 चार बार लिखना चाहिए, एक बार लिखने से नहीं चलेगा। यहाँ कैसे हमने इसका विरलन किया, वैसे ये चार का भी विरलन करो और उसके ऊपर पांच पांच दे दो। निद्रा और स्नेह एक एक ही है, इसलिए सब में एक एक रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसको एक एक ही गिनना है। अभी इसको कैसे कहेंगे हम, देखो अभी हम विकथा के क्रम से बताएंगे आपको। विकथा कौन सी होती है, स्त्री कथा है ना, हाँ स्त्री कथा वाला है, और फिर भक्त कथा वाला, यानी भोजन संबंधी, उसको भक्त कथा कहते हैं। राय ने राष्ट्र कथा होती है, और अवनिपाले ने राज कथा होती है, उसको अ लिखा उन्होंने। यहाँ क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, अभी यही प्रकरण चलेगा। और इंद्रिय के विषय में स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रिय, फिर वो निद्रा और स्नेह ऊपर गिन लेंगे हम। तो अभी पहला कैसे, अभी उसको निद्रा और स्नेह, अब इसको कैसा गिनेंगे? मुझे नहीं सुनाई दिया। हाँ, अब जो अभी इसको कैसे गिनना, तो देखो स्नेहवान निद्रालु, ये पहला नंबर बता रहे, स्पर्शन इंद्रिय का विषयभूत, क्रोध कषाय और स्त्री कथालापी, ये एक नंबर का हुआ। फिर से ये हमने इस तरह से विस्तार से लिख दिया। यहां हम जीव कांड में से पढ़ रहे 87 पेज। देखो ये पहला नंबर का भंग कैसे, वो भावार्थ में चौथी लाइन है, मैं यहाँ पाटी पर बता रही हूँ आपको। हमने नीचे स्त्री कथा, भक्त कथा, राष्ट्र कथा, अवनिपाल कथा, इसे चार विकथा के नाम लिखे। हर एक के ऊपर क्रोधमान माया लोभ लिखना है, और एक एक क्रोध के ऊपर स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु इंद्रिय लिखना, रसना के ऊपर भी, हर एक के ऊपर लिखना, ऊपर निद्रा और स्नेह लिख देना। अब जब उसका कथन करेंगे, जिसको हम आलाप कहते हैं, वो आलाप कहाँ से, ऊपर से बताएंगे। पहला नाम लेंगे स्नेहवान निद्रालु, अब इसमें से सबको पहला पहला नंबर का ले लेंगे, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत या उसके लोलुपी, क्रोध कषाई और स्त्री कथालापी, ये पहला भंग हुआ। अब दूसरे के लिए क्या करना है, दूसरा नंबर तो कहाँ चेंज करना है उसको, इसमें, बाकी सब पहले पहले ही रखना है। सेकंड नंबर होगा स्नेहवान निद्रालु, अब रसना इंद्रिय के विषयभूत वाला, क्रोध को ही रखना, अभी यहाँ मान नहीं लेना, क्रोध के ऊपर पांचों को ये टर्न करना है, स्त्री कथा और क्रोध कषाय कायम रखते हुए स्पर्शन रसना ग्रहण वगैरह इनको एक एक को चेंज करना है। पहले में सब इंद्रिय चेंज हो जाएंगे, तब फिर क्रोधमान मायलो, फिर मान पर पांचों इंद्रिया लगाना, ये सब स्त्री कथा कायम रखते हुए। यानी सेकंड नंबर कैसा होगा, स्नेहवान निद्रालु रसना इंद्रिय के वशीभूत, वही क्रोधी और स्त्री कथा लापी। तीसरा हो जाएगा स्नेहवान निद्रालु घ्राण इंद्रिय के विषयभूत, ये पांच ऐसे समाप्त हो जाने पर छठे नंबर में क्या लेंगे, स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय का और फिर मान वाला, वही स्त्री कथा वाला। अभी पांच उसके आगे के पांच रसना इंद्रिय पर लगाएं, सॉरी मान पर, ये स्पर्शन रसना घ्राण सब लगाएंगे, इस तरह से उसको गिनना है। तो ऐसे हमको एक 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 क्रम से तो आसान है बताना, पर डायरेक्ट कोई पूछेगा तो कैसे निकालना, उसके बाद बताएंगे। अभी ऐसे 80 गिनना है तो हो जाएगा, 80 तो है उसमें, तो 37,500 भेद करके बताए हैं। अभी हम 80 की बात सीखेंगे तो वो भी आसान हो जाएगा। यानी जैसे क्रोध में हमने लगाए, क्रोध में पांच इंद्रिय संबंधी लगाए ना, ऐसे मान पर पांच, माया पे पांच, इस तरह से हर एक पे पांच पांच लगाए, तो अकेले स्त्री कथा के ऊपर चार पंच 20 हो जाएंगे। क्रोध के ऊपर पांच, मान के ऊपर पांच, माया के ऊपर पांच, लोभ के ऊपर पांच, पांचों 20 इसके ऊपर हो गए। फिर हम वो दूसरा कथा ले लेंगे, भक्त कथा लेंगे, उसमें भी 20, इस तरह से 20 20 20 20। देखो अभी कभी कभी दूसरे प्रकार से प्रस्थान हम ऊपर से नीचे से भी कह सकते हैं उसको, पहला प्रस्तार दूसरा प्रस्तार, नहीं इस तरह से हम इसको यहाँ से गिनेंगे, नीचे से गिनेंगे, तो यहाँ से चेंज करेंगे, फर्क कुछ नहीं पड़ता, पहला प्रस्तार अपेक्षा है दूसरे प्रस्तार अपेक्षा, उसकी संख्या में क्रम पड़ेगा, पहला दूसरा किसको कहना उसमें फर्क पड़ेगा। अब ये नारिक कैसे निकालना, कोई भंग आपको पूछेंगे तो वो कैसे कैसे निकालना, तो उसके लिए बहुत लंबा चौड़ा उन्होंने गणित वगैरह भी बताया, उसकी बात हम छोड़ देते हैं। डायरेक्ट उसके यंत्र बनाने के उन्होंने कुछ पद्धति बताई, ये उसके गणित के द्वारा भी किसको क्या गुणा करना क्या माइनस करना, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा गणित। आपके पास पुस्तकें नहीं है, वो बात छोड़ देते हैं, हम उसके डायरेक्ट उसके कूट बनाते हैं। कूट यानी ऐसा टेबल बनाएंगे, टेबल है उसके अंदर, पर कैसे बनाए वो लिखे है क्या, क्या डायरेक्ट बनाए हैं? कहाँ जीरो लिखना, कहाँ क्या लिखना, वो है क्या? उन्होंने डायरेक्ट लिखे है, कैसे लिखे वो नहीं बनाए, कैसे बनाए वो नहीं लिखा है। हम अभी जो प्रमाद की बात अभी अपने दिमाग में है, ये कैसे बनाना उसको हम देखते हैं। ये तो बताए ना कैसे, तीन ये चार कथा, चार विकथा है, फिर कषाय है और इंद्रिया है। अब देखो ये अभी क्या प्रथम प्रसार और द्वितीय प्रसार की अपेक्षा ये गूढ़ यंत्र कैसे बनाते हैं देखो। प्रमाद स्थानकों में इंद्रिय के पांच कोठों में क्रम से एक दो तीन चार पांच अंकों को स्थापन करना। देखो अभी हमने ऊपर ये तो एक एक ही है ना, उसके बाद छोड़ दो, ये तो एक एक ही है, ये पिंड वाले तीन है, कौन सा है, पांच इंद्रिय है, चार कषाय और ये उसमें चार विकथा है। अब इसका जैसे स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुर इंद्रिय से पांच लिखना, कर्ण या श्रोत्र। अब इसमें वन टू थ्री फोर फाइव लिख देना इसकी संख्या। अब नीचे कषाय है, क्रोध मान माया लोभ। अब इसमें यहां तो जीरो लिख देना, क्या क्या लिखना क्यों लिखना वो बताएंगे। यहां पांच लिखना, यहां दस लिखना, यहां पंद्रह लिखना। अब चार विकथा है, स्त्री विकथा में जीरो लिखना, पांच और पंद्रह यहां बीस लिखना, बीस बीस चालीस लिखना और चालीस और बीस साठ लिखना। ये कहाँ क्या लिखना वो बता रहे आपको, यहां तक लिखा। अभी संख्या कैसी निकालने, तो इन तीन का जोड़ देके संख्या निकालनी। देख अभी हमने पहला नंबर कौन सा देखा था, एक नंबर स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्रिय के विषयभूत क्रोधी और स्त्री कथा वाला एक नंबर को देखा था, तो इनकी सबकी टोटल एक आनी चाहिए। दो नंबर का अगर पूछेंगे कौन सा है, स्नेहवान निद्रालु रसना इंद्रिय के विषयभूत क्रोधी और स्त्री कथा लापी, डायरेक्ट आपको दस नंबर का पूछेंगे। अभी आप ऐसे नामों को लेना है जिसकी टोटल दस हो जाएगी। हाँ? देखो स्नेहवान निद्रालु श्रोत्र इंद्रिय का विषय मान वाला और स्त्री कथा वाला, कोई भी नहीं, ये इसका तरीका है। हाँ वो तो कैसे करना वो बताएंगे उन्होंने, तो ये उनकी बुद्धि की विशालता है, ये बनाना कैसे वो बताएंगे। पहले उन्होंने बता के बताया, बना के आपको बताया है, अब कैसे बनाना वो भी बताएंगे। क्योंकि वो अभी हमारे तो अन्य अन्य संस्थान सहनन उसकी भी बात करनी है, ये हमको बनाना आना चाहिए, कैसे बनाना है। आपको पूछेंगे यहाँ 80 में से आपको 75 नंबर का आपको निकालना है, तो जहां जहां के 75 टोटल होते वो निकालो। सब में कोई तो एक लेना ही पड़ेगा, ये कुछ तो लेना पड़ेगा अपने। 5, 15 और 60 तो 80 हो जाते हैं, वो लास्ट वाला हो जाएगा। 75 वाला चाहिए, एक ही कोई उत्तर आ सकता है, दो चार उत्तर उसमें पॉसिबल ही नहीं है। ये अंतिम श्रोत्र इंद्रिय वाला 5 है, माया वाला 10 है, और ये लास्ट वाला अवनिपाल वाला। तो ऐसा कहेंगे स्नेहवान निद्रालु श्रोत्र इंद्रिय के वशीभूत मायावी और वो अवनिपाल कथा वाला। समझ में आते हैं बात? अभी 31 नंबर का निकालो, 31। हाँ, ये 11 और ये 20। हाँ, समझ में आई बात? तो स्नेहवान निद्रालु स्पर्शन इंद्र के विषयभूत मायावी और भक्त कथा वाला, ये समझ में आए ना कैसे निकालने। अब ये यंत्र कैसे बनाना उसकी बात बताएंगे, वो कल देखेंगे अभी। हाँ, फिर अपने विषय पर चलेंगे। और आपके पास वो होगा तो पढ़ के आना, तो आपको वो प्रमाद वाला प्रकरण तो और ज्यादा वो सारे कैसे बनते हैं उसके यंत्र, उसकी चर्चा करेंगे हम कल करेंगे, अब यहीं रुकें। हाँ हाँ, अब यहाँ पर हम एक हमने 7 नंबर की गाथा पढ़ी थी, वो संख्या प्रसार परिवर्तन नष्ट समुदिष्ट इन 5 विकल्पों का स्थान समुत्कीर्तन जानना चाहिए, उसी की बात अभी हम प्रमाद के आधार से जान रहे, फिर यहाँ पर भी हम लगाएंगे उसको। हाँ, 45, 46 का विशेषार्थ पढ़ रहे थे हम, वो विशेषार्थ बताया था आपको उल्टा निकाल कर, परंतु हमने 7 नंबर की गाथा के लिए विशेषार्थ निकाल कर बताया आपको, फिर वहीं से शुरू करेंगे। पेज नंबर 45 बिगिनिंग से लेक्चर 6 है ना कल का, वहां पर भी 1-3 तारीख थी, आज वो कल 2-3 है सेम तारीख चल रही अपनी, 11 साल का डिफरेंस है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।